بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریے شروتا متروں، آج کے کارکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اور قمر عباس کا سلام سکار کریں۔ شوتا، ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو 41 میٹر بین برابر 7445 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ آج شکروار ہے، آذر کی 7، نومبر کی 27 اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ۔ ہماری اس سمے کی سبھا کے کارکرموں کی روپریکھا آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سماچار سنیں گے، اس کے بعد دیرک کارکرم راجنیتک چرچہ پیش کیا جائے گا، اور راجنیتک چرچہ کے بعد آپ ہمارا ساپتاہک کارکرم پتر سنسار سن سکیں گے۔ پتر سنسار کے بعد ہم ایران میں وگیان کے کھیتر میں وکاس کے بارے میں بتانے والے اپنا ساپتاہک کارکرم آپ کی سیوا میں پیش کریں گے۔ تو شروع یہ تو تھی کارکرم کی روپ ریکھا، اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب پیش ہے خبریں۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے ایک پرمانو ویگیانک پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ رکشا منترالے نے کہا ہے کہ ایرانی نوسینا علاقے میں سرکشا کی گارنٹی ہے۔ عراق نے کہا ہے کہ بائیڈن کے آنے سے ایران اور امریکہ کے ٹکراؤ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پاکستان میں بنا اوپچارک پشٹی کے ہزاروں لوگوں نے کورونا کا ٹیکہ لگوایا۔ اور اب آپ وسطار سے سماچار سنیں۔ ایران میں ایک پرمانو ویگیانک پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے۔ کچھ سوتروں کے انوسار ایران کے ایک پرمانو ویگیانک کی تہران کے نکٹ آج شام ہتیا کی کوشش کی گئی۔ سوتروں کے انوسار اسلامی گڑتنتر ایران کے ایک پرمانو ویگیانک پر آج شام تہران کے نکٹ اجیات لوگوں نے حملہ کیا، جس کے بعد حملہوروں اور سرکشا کرمیوں کے بیچ ہونے والی جھڑپ کے دوران پرمانو ویگیانک بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں۔ ابھی اس جھڑپ اور گھائل ہونے والے پرمانو ویگیانک کے سواستھ کے بارے میں ادھک بیورے کا انتظار ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے رکشا منترالے نے ایران کی نوسینا کی شکتی کو علاقے میں شانتی و سرکشا کا بھروسہ بتایا ہے۔ شکروار کو جاری ہونے والے ایک بیان میں رکشا منترالے نے ایرانی سینا، وشیش کر نوسینا کی شکتی کا الیکھ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جنتا کے لیے بھروسے مند سینا اور وشیش کر نوسینا کی پرتیرودھک شکتی فارس کی کھاڑی کے مہتوپورن علاقے ہرمز اسٹریٹ اور عمان ساگر میں سرکشا و شانتی کی گارنٹی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی نوسینا کے اتیادھنک ہتھیار اور اپکرن بنا کر ایران کے دشمنوں کی چنتا میں ڈال دیا ہے، اور دشمنوں کی اور سے کسی بھی پرکار کی مورکھتا کا وناشکاری اور پچھتانے پر مجبور کرنے والا جواب دیا جائے گا۔ رکشا منترالے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران کی نوسینا نے تھوپے گئے یدھ کے بعد اسادھارن تیزی کے ساتھ آدھونکی کرن کی پرکریا شروع کی اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو دیش میں بنانے کے سپنے کو ساکار کیا۔ یاد رہے ایران میں آج نوسینا دیوس منایا جا رہا ہے۔ ایران کے سشستر بل کے جنرل اسٹاف کے چیف نے نوسینا دیوس کے اپلکش میں اپنے ایک سندیش میں کہا ہے کہ ایران نے کھیت پر ورچسو جمانے کے باہری شکتیوں کے سپنے کو چکنا چور کر دیا ہے۔ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने शुक्रवार को नौसेना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ईरान की नौसेना की शक्ति ने क्षेत्र के सुरक्षा मामलों पर वर्चस्व जमाने के विश्व साम्राज्य और इलाके से बाहर की शक्तियों के सपने को चकनाचूर कर दिया है और ईरान को अपनी समुद्री सीमाओं और आसपास के जल क्षेत्रों में शांति, दोस्ती और सुरक्षा का संदेशवाहक बना दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सेना और IRGC की नौसेना ने अपनी गहरी रणनीति को फारस की खाड़ी, ओमान सागर, हिंद महासागर और दूरवर्ती जल क्षेत्रों तक फैला दिया है और सुरक्षा के ध्रुव के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। ईरान सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के चीफ ने बल देकर कहा कि नौसेना और को अभियानों के अनुसार अपने ज्ञान और दक्षता में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए और मित्र देशों के साथ विभिन्न आयामों से शिक्षा और प्रशिक्षण क्षमताओं को भरोसे योग बनाने और रक्षा और प्रतिरक्षा की तैयारी जैसी अहम बातों की ओर से निश्चित नहीं रहना चाहिए। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोरोना संक्रमण के 14,000 से अधिक नए मामलों और गत 24 घंटों में 406 बीमारों की मौत की सूचना दी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने शुक्रवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि गत 24 घंटों के दौरान 14,051 नए बीमारियों की पहचान की गई है, जिनमें से 2,245 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए जबकि बाकी को आरंभिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में COVID-19 के कुल संक्रमितों की संख्या 9,22,397 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 406 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद इस बीमारी से ईरान में मरने वालों की कुल संख्या 47,095 तक पहुंच गई। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता सीमा सादात लारी के अनुसार अब तक 6,40,065 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस बात की अपेक्षा नहीं है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के सत्ता में आने से तेहरान व वाशिंगटन के बीच टकराव में कोई मूल परिवर्तन आएगा। फवाद हुसैन ने रशिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में आशा जताई है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे से वार्ता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इराक अमरीका और ईरान के बीच टकराव का मैदान बने, क्योंकि इससे इराकियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका में बाइडेन के राष्ट्रपति बन जाने से ईरान व अमेरिका के बीच टकराव में कोई बुनियादी बदलाव आएगा। उन्होंने अमेरिका के साथ अपने देश के आगामी संबंधों के बारे में कहा कि आशा है कि जो बाइडेन इराक के बारे में अलग रवैया अपनाएंगे और हम एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। उनका कहना था कि बाइडेन और उनके विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इराक को प्राथमिकता देंगे। इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन ने अपने पड़ोसी देशों के साथ इराक के संबंधों के बारे में कहा कि ये संबंध आपसी हितों पर आधारित हैं और सरकार सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों के साथ इराक के संबंधों के बारे में फैसला करती है। उन्होंने बगदाद में अमरीकी दूतावास और कूटनीतिक केंद्रों पर होने वाले हमलों के बारे में कहा कि कुछ गुट ये हमले कर रहे हैं और उन्हें संदेश मिल चुका है कि इन हमलों की बलि जनता चढ़ रही है। उन्होंने अपना दूतावास बंद करने की अमेरिका की धमकी के बारे में कहा कि अमेरिकी पक्ष ने यह धमकी दी थी, लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी है और अतीत का भाग बन गई है। इराकी विदेश मंत्री ने इसी तरह अपने देश में PKK के सदस्यों की गतिविधियों का विरोध किया, लेकिन इसी के साथ कहा कि तुर्की को इराकी क्षेत्रों पर हमले करने का हक नहीं है। इसराइल की जेल से गुरुवार को रिहा होने वाले एक फिलिस्तीनी नागरिक ने कहा है कि उन्होंने लेबनान के हिजबुल्ला संगठन और उसके महासचिव से सीखा कि अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी आज़ादी के लिए अवैध कब्जा करने वाली सरकार से वार्ता नहीं करना चाहिए। माहिर अल अखरस ने, जो गुरुवार को ज़ायनी शासन की जेल से रिहा हुए हैं, कहा कि उन्होंने हिजबुल्ला से सीखा है कि किस तरह अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इसी तरह कहा कि उन्होंने लेबनानी प्रतिरोध और हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला से सीखा कि अपनी आज़ादी और रिहाई के लिए किसी भी स्थिति में इसराइल की अवैध सरकार से वार्ता नहीं करना चाहिए। 104 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इसराइल के जेल से रिहा होने वाले माहिर अल अखरस ने कहा कि हम अंतिम विजय तक अवैध कब्जा करने वाली ज़ायनी सरकार के मुकाबले में डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन वार्ता के माध्यम से आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि वार्ता का मतलब है हिंता और उम्मीद है कि फिलिस्तीनी प्रशासन ओस्लो समझौते से पीछे हट जाएगा। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडेन को वोट दिया तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बात शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी बलों के लिए आयोजित एक समारोह में भाषण के बाद कही। याद रहे अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप सिर्फ 232 वोट ही हासिल कर पाए। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी है। ट्रंप ने अब तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है और वे निरंतर चुनाव में धांधली की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज 14 दिसंबर को एक बैठक में निर्वाचित राष्ट्रपति को वोट देने वाला है। ट्रंप ने मंगलवार को एक ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन की प्रमुख एमिली मर्फी से कहा कि वे बाइडेन को सत्ता हस्तांतरण के लिए आरंभिक प्रोटोकॉल्स के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीन द्वारा तैयार की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन की अभी औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हजारों पाकिस्तानी स्वयंसेवकों ने टीका लगवा लिया है। इस्लामाबाद से फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में वैक्सीनेशन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 10,000 स्वयंसेवियों में से लगभग 7,000 को कोविड-19 का चीनी टीका लगा दिया गया है। ये वैक्सीन चीनी लैब कान सीओ बायो और बीजिंग बायो टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। एक पाकिस्तानी स्वयंसेवी ने अपना नाम प्रकट न किए जाने की शर्त पर इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में बताया कि उसने इंसानियत की मदद के लिए स्वेच्छा से टीका लगवाने का फैसला किया है। टीका लगवाने वाले हर व्यक्ति को $50 भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की निगरानी करने वाले एक विशेषज्ञ एजाज अहमद खान ने बताया है कि कोविड-19 की इस वैक्सीन के आरंभिक परिणाम अगले 2 से 3 महीने में सामने आ जाएंगे। इस समय पाकिस्तान में कोरोना के 3,86,000 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि 7,800 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या लगभग 14,30,000 तक पहुंच गई है। दुनिया में अब तक 4,21,00,000 लोग कोरोना के घातक वायरस को हराने में सफल रहे। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है, जहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 1,32,00,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि 2,70,000 की मौत हो गई है। यूरोपियन पार्लियामेंट के सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्वी भूमध्य सागर में अंकारा की कार्रवाइयों के कारण तुर्की के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। इस गैर बाध्यकारी प्रस्ताव में, जो 3-6 31 की भारी संख्या के वोटों से पारित हुआ, कहा गया है कि यूरोपीय नेताओं को तुरंत मैदान में आना चाहिए और पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया में उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। यूरोपीय सांसदों ने इस प्रस्ताव में, जो रॉयटर्स के अनुसार फ्रांस की सरकार के दबाव के कारण पेश और पारित किया गया, पूर्वी भूमध्य सागर में गैस की खोज के लिए तुर्की के अभियान को गैर कानूनी करार दिया गया है। हालिया हफ्तों में पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके में तुर्की द्वारा ऊर्जा के स्रोतों की खोज से जुड़ी गतिविधियां और खुदाई शुरू करने के कारण तनाव काफी बढ़ गया है। यूनान, फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देशों का दावा है कि तुर्की की गतिविधियां गैरकानूनी और तनाव बढ़ाने वाली हैं, और उन्होंने इसके लिए अंकारा को चेतावनी भी दी है। दूसरी ओर तुर्की का कहना है कि वो तो सिर्फ भूमध्य सागर से अपने अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में तेल व गैस के स्रोतों के बारे में तुर्की व यूनान के बीच गहरे मतभेद हैं। भारत के राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन पर आंसू गैस व वाटर कैनन से हमला किया। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और दिल्ली कूच करने के लिए डटे हुए हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा की सड़कों पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हैं और पुलिस से हुई झड़पों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार को दिल्ली कूच के दौरान पूरे दिन किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें होती रहीं। और भारत के राज्य गुजरात में कोरोना के एक अस्पताल में लगने वाली भीषण आग की चपेट में आकर 5 मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक प्रोग्राम लेकर मोहम्मद अली कुम्मी हाजिर है। चर्चा के विषय हैं भारत प्रशासित कश्मीर में DDC इलेक्शन की तैयारी, अतिग्रहित फिलिस्तीन में लगातार 6 महीने से जारी प्रदर्शन, संसद भंग होने की संभावना और इंग्लैंड में 4 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद फिर से लॉकडाउन की तैयारी। पहले अतिग्रहित फिलिस्तीन। लगातार 6 महीने से अतिग्रहित फिलिस्तीन में खराब आर्थिक हालात, बेरोजगारी और स्वास्थ्य क्षेत्र की जर्जर हालत के खिलाफ हजारों की तादाद में जायूनियों का प्रदर्शन जारी है। इसराइली भ्रष्टाचार को लेकर बेन्यामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के आवास में दाखिल होने की कोशिश की। पेश है अतिग्रहित फिलिस्तीन से खालिद सबरना की रिपोर्ट, IRIB के लिए कमर अब्बास की जबानी।
للشهر السادس يتظاهر آلاف الإسرائيلي
लगातार 6 महीने से अतिग्रहित फिलिस्तीन में खराब आर्थिक हालात, बेरोजगारी और स्वास्थ्य क्षेत्र की जर्जर हालत के खिलाफ हजारों की तादाद में ज़ायनियों का प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन तब शुरू हुए जब कोरोना वायरस COVID-19 के महामारी का रूप अख्तियार करने से ज़ायनी शासन के स्वास्थ्य विभाग की नाकामी उजागर हो गई। लोग नेतन्याहू के इस्तीफे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसराइल के भीतर भ्रष्टाचार और ज़ायनी शासन के भीतर रस्साकशी की वजह से इसराइल में हालात बहुत ही जटिल हो गए हैं। इस वक्त 10 लाख इसराइली बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के साथ ही साथ 2 वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। नेतन्याहू आंतरिक और बाहरी मामलों में नाकाम रहे हैं। पूर्वी अलकुस में ज़ायनी प्रधानमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन करने वालों ने मानव जंजीर बनाकर नेतन्याहू के आवास में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ज़ायनी सैनिकों ने बल प्रयोग करके उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की। जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उसे देखते हुए ज़ायनी संसद के भंग होने और 1 साल के भीतर मध्य अवधि चुनाव की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। वो अपने व्यक्तिगत हित तथा सत्ता में बने रहने के लिए कानून की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं। इस वक्त ज़ायनी समाज का नियंत्रण नेतन्याहू के हाथ से निकल चुका है। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और बदलाव नजर आ रहे हैं, जिससे 1 साल के भीतर 4थी बार संसदीय चुनाव की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीन से IRIB के लिए खालिद सबरना की रिपोर्ट।
ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि पूरे देश में 4 हफ्ते के क्वारंटीन की मुद्दत के खत्म होने के बाद देश के सभी इलाकों को कोरोना वायरस के फैलाव की बुनियाद पर 3 हिस्सों में बांटेंगे, अगली बार लॉकडाउन के ज्यादा कड़े नियमों के साथ। पेश है लंदन से IRIB के लिए मुजतबा कासिमजादे की रिपोर्ट। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि पूरे देश में 4 हफ्ते के क्वारंटीन की मुद्दत के खत्म होने के बाद देश के सभी इलाकों को कोरोना वायरस के फैलाव की बुनियाद पर 3 हिस्सों में बांटेंगे, अगली बार लॉकडाउन के और कड़े नियमों के साथ। इस वक्त ब्रिटेन में 16,000 कोरोना वायरस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना संकट जारी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के जाड़े के मौसम के प्रोग्राम की व्याख्या में कहा कि वो नहीं चाहते थे कि पूरे देश में क्वारंटीन की मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा लॉकडाउन लगाएं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। खतरा अभी तक टला नहीं है। जाड़े का मौसम आ रहा है जो वायरस के पनपने के लिए सहायक मौसम है। स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस का फैलाव फिर से तेज ना हो जाए। कोरोना से प्रभावित हर 3 में 1 शख्स ऐसा होता है जिसमें कोरोना के सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे शख्स से भी कोरोना वायरस फैलता है। ब्रिटेन में कोरोना संकट के जारी रहने के बावजूद सरकार ने नए साल के समारोह में परिवार के 3 सदस्यों के 1 साथ इकट्ठा होने की इजाजत दी है। यह ऐसा फैसला है जिस पर टीकाकारों की आलोचना और परिवार के लोगों की चिंता सामने आई है। एक महिला के शब्द। मैं समझती हूं कि कोरोना महामारी के दीर्घकालिक परिणाम सामने आएंगे। किसी भी गलत फैसले से बच्चों और नौजवानों के भविष्य और हम लोगों के रोजगार के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस देश में 57,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 15,00,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं, जिससे यूरोप के इस देश को यूरोप में संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में माना जा रहा है। इन हालात की वजह से पूरे ब्रिटेन में 4 हफ्ते के क्वारंटीन लागू होने के बाद दोबारा लॉकडाउन लगने जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इस देश में रहने वाले 99% लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां कोरोना के खतरे का स्तर 2 या 3 है, या उन पर कोरोना की चपेट में आने का खतरा ज्यादा या बहुत ज्यादा है। लंदन से IRIB के लिए मुजतबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब भारत का रुख करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में शनिवार को DDC इलेक्शन के पहले चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है। पेश है श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
DDC इलेक्शन के हवाले से पहले चरण का मतदान कल होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने इस हवाले से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। यहां ये बात उल्लेखनीय है कि भाजपा समर्थित दल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अलावा कई दल इसमें शामिल हुए हैं, जबकि पीपल्स अलायंस ने भी एक गठबंधन बनाया है और उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अगर वो उनके पक्ष में मत देते हैं तो ये नई दिल्ली के लिए ऐसे संकेत होंगे, उनको पता चलेगा कि जो निर्णय उन्होंने पिछले वर्ष 5 अगस्त को लिया था वो सही नहीं है। पीपल्स अलायंस के दिग्गज नेताओं ने कश्मीरी लोगों से प्रार्थना की थी कि वो किसी भी हाल में मतदान में भाग लें और नई दिल्ली को ये बता दें कि कश्मीरी लोग कोई भी बात अब स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका ये मानना है कि ये ऐसा समय नहीं था कि जिस समय मतदान होने थे, परंतु उन्होंने कहा जब नई दिल्ली ने इसका बुगुल बजाया तो उन्होंने उसमें भाग लिया।
मेरे हिसाब से तो आज ये टाइम नहीं था, पहले सर्दी का मौसम था, दूसरा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो इनको नहीं करना चाहे तो अब इन्होंने कर लिया, हम इनके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ते, इसलिए हमें मजबूरन इसमें उतरना पड़ा। और मेरी गुजारिश होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के, मतलब हर एक बाशिंदी को, कि आज अलायंस का जो भी कैंडिडेट जहां पे भी होगा उसको कामयाब करना है, उसको कामयाब करके ही हम अपने आप को ही ये वोट दे रहे हैं, क्योंकि अगर आज हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, समझो हमारे साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा और हमसे जो भी मतलब अभी अल्लाह ने दिया हो ये सारा हमसे छीन लेंगे।
इस बीच कई दलों ने आज भी लोगों को निभाने के लिए बहुत सारे प्रबंध किए और लोगों को ये बल दिया कि वो मतदान में भरपूर तरीके से भाग लें। इस बीच कई अलगाववादी गुटों ने एक बार फिर लोगों से ये आह्वान किया है कि वो इन चुनावों से अपने आप को दूर रखें। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये थे श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अब पेश है प्रोग्राम पत्र संसार, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का आखिरी प्रोग्राम विज्ञान की डगर।
पत्र संसार।
دوستو پطرس انصار میں آپ کا سواگت ہے، اپنی دیدی مریم مہر دادی اور
بھیا حسن عباس کا ہاردک اور سپریم سلام سویکار کیجیے۔
दोस्तों हमें आशा है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। और सदा की भांति आज के कार्यक्रम में भी हम आपके कुछ पत्र, ईमेल और कमेंट्स शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले शामिल कर रहे हैं, ईमेल से शुरू कर रहे हैं। खगरा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से यानी मिताली लिसनर्स क्लब से शिवेंदु पल लिखते हैं कि रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और श्रोता बंधु को मिताली लिसनर्स क्लब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी रेडियो तेहरान का एक नियमित श्रोता हूँ। अब रेडियो तेहरान हिंदी सेवा का अनुष्ठान रात को सुन पाता हूँ। मेरे इलाके में बहुत सारे श्रोता आपके कार्यक्रम सुनते हैं। समाचार और सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ईरान और विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेंदु पॉल साहब, और इसी तरह से आपके श्रोता संघ के सभी सदस्यों का कार्यक्रम पत्र संसार में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आ रहे हैं ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। रात्रिकालीन प्रसारण आपने लिखा है कि आप सुनते हैं, जाहिर सी बात है कि अब हमारा प्रातःकालीन जो प्रसारण है वो समाप्त हो चुका है बहुत सारी समस्याओं के कारण। अब केवल रात्रिकालीन प्रसारण ही हमारे यहाँ से प्रसारित होता है, तो इसके बारे में आप लोग हमेशा की तरह से अपने विचार हमें लिखकर भेजा करें और प्रसारण की गुणवत्ता के बारे में भी हमें बताया करें कि आपके क्षेत्र में हमारा प्रसारण किस तरह सुनाई देता है।
जी, अगला ईमेल है एहसान खान का। इन्होंने लिखा है कि रेडियो तेहरान के सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई। कई दिनों से आपके कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं। आपके कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं तो बहुत बेचैनी रहती है। आपके यहाँ से प्रसारित समाचार, राजनीतिक चर्चा, विश्व दर्पण कार्यक्रम आजकल मैं सुनता हूँ। बहुत ही सटीक होते हैं समाचार। आपकी वेब पर भी चक्कर लगाता हूँ, काफ़ी मालूमात मिलती हैं। अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान खान साहब। आप हमारे प्रसारण को भी नियमित रूप से सुनते हैं, हमारी वेबसाइट भी देखते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है एक श्रोता और एक पाठक से, इससे ज़्यादा हमारी कोई उम्मीद नहीं है। आप इसी तरह से हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहा करें और कार्यक्रम भी सुनते रहा करें। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार और उन पर टिप्पणियां भी हमें लिखकर भेजें, और इसी तरह से वेबसाइट में अगर आपके हिसाब से कोई कमी रहती है या किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी।
तो दोस्तों अब बारी है ईरानी संस्कृति से जुड़ी एक खबर की।
जी, तो क्या खबर लेकर आई दीदी आप?
आज मैं पश्चिम ईरान जाना चाह रही हूँ। पश्चिम ईरान में उरामन या उरामनात क्षेत्र यूनेस्को के ऐतिहासिक स्थलों की सूची में पंजीकृत होने के करीब है, यानी अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है।
जी,
उरामन एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो कुर्दिस्तान और किरमानशाह के पश्चिमी प्रांतों के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
जी,
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के एक आंकलनकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक परिषद और साइटों के एक प्रतिनिधि हेसाम मेहदी ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की संभावना की जांच करने के लिए उरामन का दौरा किया।
जी,
वो कुर्दिस्तान प्रांत पहुंचे जहां उन्होंने एक गांव और चार खानाबदोशों की अस्थायी बस्तियों का दौरा किया। यात्राओं के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की और उनकी जीवन शैली, स्थानीय वेशभूषा और उनके व्यवसायों का मूल्यांकन किया। यूनेस्को के आंकलनकर्ताओं ने 22 सितंबर 2020 को किरमानशाह प्रांत के उरामन का दौरा शुरू किया और उसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उराम क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया।
जी,
वो आने वाले दिनों में अन्य प्रांतीय शहरों का भी दौरा करने वाले हैं।
बहुत अच्छी खबर सुनाई दीदी आपने, ईरान की एक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण होने वाला है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो दीदी मुझे लगता है कि अब आप कुछ कमेंट्स शामिल
जी,
करेंगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव में हार के बावजूद व्हाइट हाउस बना रहा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का प्लान, इस पर सादिक जिया नकवी लिखते हैं, ट्रंप चला गया। मैं कल एक लेख पढ़ रहा था कि उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को चुनाव में हार को बेहतर तरीके से स्वीकार करने के लिए कह रही हैं। ट्रंप नस्लवादी मानसिकता वाला अलग थलग व्यक्ति है, आपको इम्पीचमेंट याद ही होगा, और उनके पद से हटने की एक बड़ी हेडलाइन खबर थी। वो राजनेता नहीं है, वो एक जुआरी है जो कार्यालय के लिए गलत व्यक्ति है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही लिखा है आपने। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछली बार भी जो जीते थे वो बराक ओबामा की जो सरकार थी उसका 2 कार्यकाल पूरा हो चुका था और अमेरिका के लोग काफ़ी नाराज़ थे, तो हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को जो ज़्यादा वोट मिले थे, हालांकि जनता के वोट भी ज़्यादा नहीं मिले थे ट्रंप को, इलेक्टोरल वोट चूंकि इन्हें ज़्यादा मिले थे इसलिए ये राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे, तो लोगों ने इनकी शख्सियत और इनके व्यक्तित्व को देखकर इन्हें वोट नहीं दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये राजनीतिज्ञ तो थे नहीं, ये तो एक कारोबारी हैं, तो इसीलिए लोगों ने वोट दिया था कि वो नाराज़ थे और अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को हराने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को जिताया था, ट्रंप को नहीं जिताया था, तो इस तरह से आए थे। और जाहिर सी बात है पिछले 4 साल में जो इनका क्रियाकलाप है वो इंतहाई ख़राब रहा है, सभी क्षेत्रों में देख लें आप, चाहे विदेश नीति का एक क्षेत्र हो, आंतरिक एक क्षेत्र हो, कोरोना से निपटने का मामला हो, नस्लवाद हो, भेदभाव हो, हर क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फेल रहे हैं, तो उन्हें तो इस बार हारना ही था। अब वो हार चुके हैं, ढिटाई के साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं व्हाइट हाउस से नहीं निकलूंगा, मैं चुनाव जीत चुका हूं, मैं अदालत जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो चाहे जो कर लें उन्हें जाना ही पड़ेगा।
भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा, नई दिल्ली ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब, इस पर तहसीन रिजवी लिखती हैं, ये तनाव तभी खत्म होगा जब पॉक, गिगलित, बल्तिस्तान, अक्साई, चीन वापस इंडिया नहीं आ जाता। अब सरकार कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार है।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिन क्षेत्रों के नाम आपने लिए हैं उनमें से कुछ पाकिस्तान के नियंत्रण में है, कुछ चीन के नियंत्रण में है, कुछ भारत के नियंत्रण में है, तो ये सीमावर्ती विवाद हैं, बहुत सारे देशों के बीच चलते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं हो पाते, तो बेहतर यही है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे जाएं, पड़ोसियों के साथ वार्ता की जाए, वार्ता के माध्यम से विवादों को हल किया जाए, क्योंकि पड़ोसियों को तो नहीं बदला जा सकता है, इसलिए अपने व्यवहार को, अपने रवैये को बदलना चाहिए इंसान को। अगर भारत पाकिस्तान और भारत चीन के संबंध अच्छे हो जाते हैं तो ये क्षेत्र बहुत अधिक प्रगति कर सकता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे विचार में ये भी साम्राज्य की साजिश है कि इस क्षेत्र के देशों को और जो अहम देश हैं उनको आपस में लड़ाकर और भिड़ाकर रखा जाए ताकि ये देश, ये क्षेत्र जो है वो हमेशा पिछड़ा रहे। दोस्तों अब बारी है अपने एक श्रोता के विचार जानने की, और ये हैं मोहम्मद इमरान चेंबूर मुंबई से, तो आइए इनके विचार सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान मुंबई महाराष्ट्र चेंबूर से, मैं एक जॉब करता हूँ ICICI बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, तो मैंने मैसेज करना चाहा आपको, इसलिए कि न्यूज़ मैं बहुत सारी न्यूज़ें सुनता हूँ, जिसमें बीबीसी न्यूज़ है, एनडीटीवी है और अल जज़ीरा है, और एक सोशल मीडिया पे आपका न्यूज़ है अल फारस टुडे। तो मैम ये न्यूज़ से मुझे बहुत ही चीज़ें पता चली कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, सऊदी अरबिया, ईरान, बहरीन, कतर, इराक, सीरिया, इसराइल वगैरह बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें आप न्यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड आप देते हैं, और आपकी न्यूज़ बहुत पसंद आई। न्यूज़ का जो आपका पैटर्न होता है देने का, जो पैगाम है न्यूज़ का, काफ़ी आले दर्जे का है, और मुमकिन है कि आप बेहतर न्यूज़ लोगों तक पहुंचाती हैं जिसमें सच्चाई 100% होती है। मैम और ईरान के बारे में भी न्यूज़ नहीं मिल पाती है, तो ईरान की न्यूज़ काफ़ी अच्छे से हमें मिल पाती है आपके ज़रिए, और फिलिस्तीन की, इराक में क्या हो रहा है, और बाकी बीच में भी क्या हो रहा था जब भी दाइश और ये सब अटैक्स थे, और उसमें रशिया और अमेरिका और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, और किस तरीक़े का क्या माहौल है, किस तरीके से लोग टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो वो सब भी हमें बहुत अच्छे से पता चला आपके ज़रिए। न्यूज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारे मुल्क के भी बारे में आप बताती हैं, हिंदुस्तान के बारे में, बहुत अच्छी बात है, और आपके ज़रिए से हमें न्यूज़ मिलती रहती है हर जगह की। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, जिसकी वजह से हम हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्र अदा करता हूँ मैं आपका, कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरा जैसा कोई काम रहेगा मेरे लायक तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा। खुदा हाफिज़।
तो दोस्तों ये थे चेंबूर मुंबई के हमारे श्रोता मोहम्मद इमरान, और यहीं पर हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं और रेडियो तेहरान के कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने विचार रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, हम उसे पत्र संसार कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम पत्र संसार का समय यहीं पर समाप्त होता है। अपनी दीदी मरियम मेहरदादी और भैया सनब्बास को अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ नए आविष्कारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ सप्ताह पहले होने वाले कुछ आविष्कारों के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको ईरानी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा मसाज और मालिश करने वाले जूते बनाने के विषय पर बात करेंगे। ये जूते डायबिटीज और पार्किंसंस के उपचार में बहुत ही उपयोगी और प्रभावी हैं। आजकल के इस भाग दौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वो है मधुमेह। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को अगर पकड़ ले तो फिर जीवन भर उसे नहीं छोड़ती। इस बीमारी का जो सबसे बुरा पक्ष है वो ये है कि ये शरीर को कई अन्य बीमारियों का निमंत्रण भी देती है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी तथा पैरों में दिक्कत होना आम बात है। पहले ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद हुआ करती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मधुमेह या डायबिटीज़ कैसे होती है। जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मधुमेह या डायबिटीज़ रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होता है। मधुमेह ज़्यादातर वंशानुगत और जीवन शैली बिगड़ी होने के कारण होता है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 श्रेणी में रखा जाता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता दादा दादी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को इस बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, अनियमित खान पान है और ज़्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर अब सवाल पैदा ये होता है कि डायबिटीज़ या मधुमेह का सबसे बड़ा खतरा क्या है। डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक से होती है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति से 50 गुना बढ़ जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल बदलाव होता है और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे खून की नलिकाएं और नसें दोनों ही प्रभावित होती हैं। इससे धमनी में रुकावट आ सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी मधुमेह रोगियों में बढ़ जाता है। डायबिटीज़ का लंबे समय तक इलाज न करने पर ये आँखों की रेटिना को नुकसान पहुँचाती है। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। पार्किंसन रोग से तात्पर्य ऐसे मानसिक रोग हैं जिनमें शरीर में कपकपी, कठोरता, चलने में परेशानी होना, संतुलन और तालमेल इत्यादि समस्याएँ पाई जाती हैं। पार्किंसन रोग की शुरुआत सामान्यता बीमारी से होती है जो कुछ समय के बाद गंभीर रूप धारण कर लेती है। पार्किंसंस रोग की शुरुआत शरीर में छोटे से अंग से जैसे उंगली, हाथ इत्यादि से होती है जो कुछ समय के बाद पूरे शरीर में फैल जाती है। ईरानी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए मसाज और मालिश के लिए ऐसे जूते बनाए हैं जो डायबिटीज और पार्किंसंस के मरीजों के लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं। विशेषज्ञों का इस बारे में कहना है कि ये मेडिकल जूते खून के दौरान को सही करते हैं और व्यवस्थित ढंग से खून का संचार करते हैं। इसी तरह ये जूते गठिया, वेरिकॉज, वेंस, मांसपेशियों में ऐंठन, कलाई और पैरों में खून जमना और पैर या हाथ की उंगलियों में खून के दौरान के जारी रहने में भी प्रभावी होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि उर्सोलिक एसिड क्या है। उर्सोलिक एसिड एक रासायनिक परिसर है जो सेब के मैमों में पाया जाता है। एसिड को पहली बार सन 1920 के दशक में पहचाना गया था, जब ये फलों के पेल्स में पाया गया था, साथ ही रोजमेरी और थाइम जैसी जड़ी बूटियों में भी। हम ये जानते हैं कि पौधों, फल और जड़ी बूटियों में उर्सोलिक एसिड मौजूद है, जिसमें हर दिन खाने वाले कई आम खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। आम तौर पर जब लोग उर्सोलिक एसिड लेते हैं तो वे इसे सेब से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले सबसे अधिक मात्रा में उर्सोलिक एसिड होता है। ये पौष्टिक एसिड की खुराक में उपयोग किया जाता है, तो ये आम तौर पर निकालने से ही प्राप्त होता है। उर्सोलिक एसिड अचानक क्यों एक लोकप्रिय पूरक घटक बना है? अध्ययनों से पता चलता है कि उर्सोलिक एसिड विभिन्न कैंसर सेल के प्रसार को रोक सकता है। ये आपके शरीर में सफ़ेद वसा कम करते हुए मांसपेशियों और भूरे रंग की वसा की मात्रा बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए एक लोकप्रिय पूरक मिश्रण साबित होता है। इसी को देखते हुए ईरानी वैज्ञानिकों ने ऐसी क्रीम बनाई है जो त्वचा की झुर्रियों को दूर करती है और त्वचा को हमेशा जवान रखती है। दोस्तों, आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ईरान के शिराज मेडिकल कॉलेज ने कैंसर के उपचार के लिए जीन थेरेपी में प्रयोग होने वाली नैनो टेक्नोलॉजी से संपन्न एक संयंत्र बनाया है। इस संयंत्र के बनाने वाले का कहना है कि सबसे पहले फॉकमैन नामक एक वैज्ञानिक ने इस बारे में अपना दृष्टिकोण पेश किया था, जिसके अनुसार ट्यूमर के फैलने में एंजियोजेनेसिस का प्रभाव होता है। एंजियोजेनेसिस शरीर की नई रक्त वाहिकाओं को विकसित करने और विकसित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमें बीमारियों से उबरने में मदद देती है। जब हम बच्चे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं तो एक वांछित स्तर पर ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखने की जरूरत होती है। किसी भी प्रकार के घाव होने पर कटा या खुरचने की क्रिया, पंचर या सर्जिकल घाव की तरह ये विशेष रूप से सहायक होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो एंजियोजेनेसिस होता है, जो त्वचा को स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद करता है। महिलाएं अपने प्रजनन वर्षों के दौरान हर महीने एक सामान्य एंजियोजेनेसिस चक्र में ग्रस्त रहती हैं। नई रक्त वाहिकाएं गर्भाशय की परत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जो मासिक धर्म के दौरान मासिक रूप से बहाया जाता है। शरीर में एंजियोजेनेसिस वृद्धि कारक और अवरोधक होते हैं। इस प्रक्रिया की तुलना स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से की जा सकती है। कुछ बीमारियों में एंजियोजेनेसिस बहुत बार या पर्याप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कैंसर विकसित करने के लिए बहुत अधिक रक्त वाहिकाएं बन सकती हैं, जो कैंसर के ऊतकों को पोषण देती हैं। उसी समय असामान्य ऊतक का पोषण हो रहा होता है, स्वस्थ ऊतक मर रहा होता है। अक्सर रोगग्रस्त कोशिकाओं को अधिक रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करने के लिए कोडित किया जाता है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध इस प्रक्रिया को बंद करने के तरीके खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य बीमारियां जहां बहुत अधिक रक्त वाहिकाएं वास्तव में ऊतक की मृत्यु का कारण बन सकती हैं उनमें मधुमेह और संधिशोथ जैसे शामिल हैं। इस ईरानी वैज्ञानिक और शोधकर्ता का कहना है कि ये उपचार एंजियोजेनेसिस की रोकथाम करने में बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये रेडियो तरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, सभा के अंत में आज के मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर। ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक को शहीद कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी नौसेना इलाके में सुरक्षा की गारंटी है। इराक ने कहा है कि बाइडेन के आने से ईरान व अमरीका के टकराव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान में बिना औपचारिक पुष्टि के हजारों लोगों ने कोरोना का चीनी टीका लगवाया। तो श्रोता, हमें आशा है कि हमारा ये आज का प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। इसी के साथ हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज। Thank you.